मुश्किल अल्फाज की वजाहत और उनके मादा, और 21 पे, 21 में लफ्ज है उस्वातुन। उस्वातुन जो है ये आपको आता है जी? उस्वातुन का रूट है अलिसीन या, इसके मानी होते हैं किसी का इलाज करना, तसल्ली देना, मदद करना, और आसियातुन किसी को अपने बराबर समझना, आसी किसी को अपने बराबर समझना, और फिर इसी से उस्वा है। फिर उस्वा के मानी क्या है? इक्तदा, नमूना, वो चीज जिससे तसल्ली हासिल की जा सके। और ये लफ्ज जो है ये अच्छे और बुरे दोनों मानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी को तसल्ली जो है वो बुरे किरदार को अपना नमूना बनाकर, अपने लिए नमूना बनाकर होती है, और किसी को तसल्ली जो है वो अच्छे किरदार को अपने लिए नमूना बनाकर होती है। तो उसवा जो है, जो रोल मॉडल है, वो अच्छा भी किसी के लिए हो सकता है और किसी का उसवा जो है वो उसके लिए बुरा भी हो सकता है। यानी उस पर डिपेंड करता है कि उसने जो उसवा इख्तियार किया है या जिस उसवा के पीछे वो चल रहा है, तो उसने कौन सा उसवा जो है वो इख्तियार किया है। और आयत नंबर 23 है, इसमें लफ्ज है नाहबाहू, नून हाबा। असल में नून हाबा जो है ये ऊंट का खांसना, बुलंद आवाज से रोना, शदीद गिरिया खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मौत के लिए भी आता है, वक्त के लिए आता है, नजर के लिए भी आता है, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप देखें कि जिम्मेदारी या फिर मन्नत मानना, उसके लिए भी ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। जिम्मेदारी के लिए कुरान में हमें दो लफ्ज मिलते हैं, एक है जिम्मा का और दूसरा है नहब का। तो जिम्मा क्या होता है कि दूसरे से अहद को निभाने की जिम्मेदारी है ना, आप किसी की भी कोई जिम्मेदारी ले लेती हैं। और नहब जो है उस नजर को कहते हैं जिसका पूरा करना वाजिब हो। जैसे आदमी ने अपनी जान पर एक चीज वाजिब की है, वो जिम्मेदारी जो इंसान ने खुद अपने ऊपर लाजिम कर ली, खा ये नजर की जिम्मेदारी हो या फिर ये अहद की जिम्मेदारी हो। मतलब जब ऊंट खांसता है तो क्या करता है, तकलीफ में भी हो रहा, तकलीफ होती है ना इंसान, लेकिन इंसान भी खांसता है, लेकिन ऊंट के खांसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बुलंद आवाज से रोना, तो बुलंद आवाज से इंसान रो रहा है, शदीद गिरिए की कैफियत में है, खांसी में है। ये बुलंद आवाज से तब रोता है जब इंसान मुसीबत परेशानी में होता है, मौत का वक्त हो सकता है ना। या फिर ये कि बहुत जब मुश्किल में होता है, परेशानी में होता है, तो उस वक्त इंसान फिर नजर मान लेता है, मन्नत कर लेता है, तय कर लेता है कोई बात। रो भी रहा है, गिरिया जारी है, खांस रहा है, मर रहा है, लेकिन साथ ही उसने मन्नत मान ली है। मुश्किल में ही मन्नत आमतौर पर हम मानते हैं, खुशी में भी लोग मानते हैं, लेकिन भारत मुश्किल में। खैर, आगे चलते हैं। और आगे लफ्ज हमें मिल रहा है, आयत नंबर 26 है, और लफ्ज है फयासी हिम, सयासी हिम। और ये जो लफ्ज है इसका रूट है स्वाद या स्वाद, और सीसा तुन की जमा है सयासी, तो सयासी का वाहिद क्या हुआ? सीसा तुन। और स्वाद या स्वाद से मुराद क्या है? बाज लोग इससे मुराद किला गढ़ी लेते हैं, किला गढ़ी, हर वो चीज के जिसके जरिए तहफुज हासिल हो सके, तहफुज जो है वो किया जाए, सीसा तुन कहलाता है। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना सीसा तुन, ये गाय के सींग को भी कहते हैं। सीसा तुन लफ्ज जो है ये गाय के सींग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि गाय के सींग को क्यों कहते हैं? इसलिए कि गाय जो है अपने सींगों के जरिए से अपना तहफ्फुज़ करती है, अपनी हिफाजत करती है। उस पर कोई जब हमला करता है, उसके जब कोई पीछे پیچھے پڑتا ہے تو وہ اپنے سینگوں سے جو ہے نا اپنی حفاظت کرتی ہے. اور گویا کہ یہ مرغ کا جو پنجہ ہوتا ہے نا اس کو بھی سیسا کہتے ہیں. مرغ اپنے پنجے سے کیا کرتا ہے؟ اپنی حفاظت کرتا ہے. تو مرغ کا پنجہ ہو یا گائے کا سینگ ہو حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پھر ترقی کر کے ادھار کے معنی لے کر یا ترقی کر کے یہ لفظ دفاعی حصار تلے گڑیاں اس کے لیے استعمال ہونے لگا. اور اس کے بعد جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے آیت 27 میں پتعوہا وہ توئے حمزہ, اور اس کے معنی ہوتے ہیں, معنی کیا ہوتے ہیں وتی کے, کہ کسی کو روند ڈالنا. وہ توئے حمزہ, اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ روند ڈالنا, اور جیسے کسی چیز کو جو ہے وہ کسی کے ساتھ موافقت کرنا, روندنا, اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. جیسے آپ نے جو ہے وہ اس کے لیے بھی آئے گا کہ فتح حاصل کر لی, تمہارے قدم وہاں تک پہنچ گئے, اس کے لیے بھی آتا ہے. جیسے مرد عورت کے ساتھ جب نکاح کر لیتا ہے پھر تعلق قائم کرتا ہے تو وتی کرنا, اس کے لیے بھی آتا ہے. خیر, وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.